ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत कार्यक्रम में। पिछले बुधवार हमने चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक, और ये श्लोक न केवल भगवद गीता में बल्कि इस अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें भगवान अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान किस तरीके से प्राप्त किया जाता है इसका विश्लेषण दिए। तो हमने पिछले हफ्ते इसका भाग एक सुना, क्योंकि ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है इसलिए दो भागों में हम इसे विभाजित किए हैं। तो आज भाग दो होगा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेने महता योगो नष्ट परंतप। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेने महता योगो नष्ट परंतप। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेने महता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, ये जो दिव्य ज्ञान है इसे परंपरा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि राजऋषियों ने किया। इमं राजर्षयो विदुः, परंतु सकालेने महता, काल के प्रभाव से ये दिव्य ज्ञान नष्ट हो चुका, इसलिए इसे पुनः स्थापित करने के लिए आज मैं तुम्हें ये सुना रहा हूं। यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा नष्ट हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो अब हम पिछले हफ्ते जो हमने चर्चा की, जिस मुद्दे तक हम क्विक एक रिकैप लेंगे उसका, तो चर्चा के विषय हमारे इस प्रकार से, कुछ मुद्दे पिछले हफ्ते के हैं, पिछले श्लोक से संबंध, परंपरा शब्द की व्याख्या, इस ज्ञान को राजऋषियों ने प्राप्त किया, काल के प्रभाव से ज्ञान नष्ट हो गया है भगवान के अनुसार, भगवान ने अर्जुन को परंतप क्यों कहा। तो हम एक क्विक रिकैप लेंगे, पिछले श्लोक से संबंध, भगवद गीता के ज्ञान की शुरुआत की भगवान ने इस चौथे अध्याय में, और दूसरे श्लोक में परंपरा में दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का महत्व बताया। परंपरा इस शब्द को विभाजित करते हुए हमने इसकी व्याख्या सुनी। परम अर्थात श्रेष्ठ, पर व्यक्ति, आ का अर्थ है समीप या सम्मुख, श्रेष्ठ व्यक्तियों के समीप एवं सम्मुख जाकर लिया गया दिव्य ज्ञान है परंपरा। अब श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? अपने से श्रेष्ठतर व्यक्ति से जिसने ज्ञान लिया हुआ है, जिसने परम तत्व को जान लिया है, और सबसे महत्वपूर्ण अपने उदाहरण से सिखाने वाला जो है। तो गुरु परंपरा का अर्थ है श्रेष्ठ व्यक्तियों के समीप एवं सम्मुख जाकर लिया गया दिव्य ज्ञान। फिर हमने एक प्रामाणिक गुरु, उनकी योग्यता क्या होती है, इसकी हमने चर्चा की, और फिर ये महत्वपूर्ण श्लोक इसी अध्याय से जिसमें भगवान प्रामाणिक शिष्य की योग्यता क्या होती है इसका भगवान ने वर्णन किया है। प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया, नम्रता विनम्रता और उचित प्रश्न, इसका जो समागम है ये बनाता है एक प्रामाणिक शिष्य को। तत्पश्चात जो चार प्रामाणिक परंपरा है, संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र कुमार, ब्रह्म मध्व, गौड़ीय संप्रदाय, इसकी चर्चा की श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने भगवद गीता यथारूप हमें प्रस्तुत कर दी है, वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा से सारे जो गुरुजन गुरुवर्ग उनका लिस्ट दिया गया है श्रीमद् भगवद गीता में। और एक उदाहरण, गुरु परंपरा दीप के समान है, एक दीप से दूसरा दीप जलाना और दोनों उसी प्रकार से प्रज्वलित होकर अंधकार को दूर करते हैं। और ये महत्वपूर्ण श्लोक 15वें अध्याय से, जहां पर कोई यदि ये कहे कि मैं परंपरा शुरू कर सकता हूं क्या, तो भगवान ने कॉपीराइट लगा दिया है कि ये जो ज्ञान है, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम, कि ये वेद मेरे मुखारविंद से आते हैं, इन वेद के द्वारा मुझे ही जानना है और वेद का अंत भी मैं ही हूं। और फिर अगला मुद्दा हमने लिया था पिछले हफ्ते, इमम राजर्षयो विदुहु, भगवान ने यही दिव्य ज्ञान जो अब अर्जुन को दे रहे हैं, सूर्यदेव, मनोर, इक्ष्वाकु ऐसे राजऋषियों को दिया इस सृष्टि के शुरुआत में, तो उसका महत्व क्या, क्यों? क्योंकि भगवद गीता जो है, यहां पर शासन के जो अधिकारी हैं उनके लिए अत्यंत आवश्यक है समझना, क्योंकि जब वो भगवद गीता के आधार पर अपना जीवन जिएंगे व्यक्तिगत रूप से और पूरे देश को, पूरे राज्य को चलाएंगे भगवद गीता के आधार पर, तब जाकर धर्म की स्थापना होगी। और हमने आदर्श राम राज्य की चर्चा की, उससे पहले आप जानते हैं हमने दिखाया था कि वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है न केवल अपने देश में बल्कि देश विदेश में, पूरे विश्व में शासन अधिकारियों की वर्तमान स्थिति क्या है, और राम राज्य जिसकी चर्चा तो होती रहती है यहां वहां, परंतु है क्या वो आदर्श राम राज्य, वो जब तक कि हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, परंपरा के द्वारा उसे प्राप्त नहीं करेंगे, कतई समझ में नहीं आने वाला। और हमने कुछ राजऋषियों के उदाहरण लिए, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, उपरिचर, राजऋषि शांतनु, चंद्रहास इत्यादि। तो अब हमारा आज का सेशन प्रारंभ होगा, अब तक रिकैप चल रहा था बाय द वे। तो भगवान ने आगे कहा कि मैंने ये दिव्य ज्ञान राजऋषियों को दिया और राजऋषियों ने इतने समय से इस दिव्य ज्ञान को धरोहर के रूप में दूसरे राजऋषियों को दिया, परंतु फिर भी कालेनेह महता, काल क्रम, काल के प्रभाव से ये दिव्य ज्ञान कहीं तो लुप्त हो गया। योगो नष्ट परंतप, हे परंतप अर्जुन, ये योग या ये ज्ञान नष्ट हो गया। तो यहां पर भगवान ने जो योगो नष्ट इन शब्दों का इस्तेमाल किया, इसका अर्थ क्या है, हमको केवल अगर हम उसको बाहरी रूप से समझने की कोशिश करें तो हम थोड़े अचरज में चले जाएंगे कि अचानक भगवान पिछले श्लोक में तो ज्ञान और इस श्लोक में भी गुरु परंपरा की बात करें, अचानक योग, तो क्या योग नष्ट हो गया? तो यदि हम आचार्यों की टीका के द्वारा, उनके तात्पर्यों के द्वारा नहीं समझेंगे कि उस योग का अनुवाद क्या किया गया, नहीं तो लगेगा कि हां सत्ययुग में तो शायद अच्छे अच्छे योगी रहे होंगे और कलयुग में कौन योग कर सकता है। तो हां कलयुग में योग नष्ट हो चुका है। कौन सा योग नष्ट हो चुका है? वो जो प्राणायाम अनुलोम विलोम, वो इतना ज्यादा लोग नहीं कर पाते, इक्का दुक्का ठीक से कोई कर पाते हैं। तो क्या उस प्रकार का योग नष्ट हो गया है? नहीं, यहां पर योग का अनुवाद किया गया है ज्ञान। ज्ञान नष्ट हो गया है। योग का एक और अर्थ है जो यज धातु से आया, अर्थात जीव का भगवान के साथ मिलन, प्रेममय आध्यात्मिक मिलन। और वो केवल आसन करने से नहीं होता, जीव का भगवान से आध्यात्मिक प्रेममय मिलन उसकी बुनियाद है दिव्य ज्ञान। और जब वो बुनियाद हिल जाती है, या वो बुनियाद, या किसी के जीवन को ये कहें कि बेबुनियाद हो गया उसका जीवन, आध्यात्मिक जीवन बेबुनियाद हो गया, अर्थात ज्ञान नष्ट हो गया, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज हैज बीन लॉस्ट, पूरा जो हार्ड ड्राइव है इरेज, सब कुछ इरेज हो गया, वो है योगो नष्ट। तो अब ये जो भगवान ने योगो नष्ट ये दो शब्द इस्तेमाल किए हैं, इसका संबंध पिछले श्लोक से भी है। एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने उठना चाहिए यदि हम दोनों श्लोक को एक साथ आमने सामने रखेंगे, कि पिछले श्लोक में भगवान ने कुछ तो कहा था योग के विषय में, इस श्लोक में भगवान योग के विषय में कुछ कह रहे हैं, किसे याद है? क्या संबंध हो सकता है, या क्या प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो सकता है योगो नष्ट से संबंधित? घबराइए मत, बताते हैं आपको। पिछले श्लोक में भगवान ने शब्द इस्तेमाल किए थे योगम अव्ययम, और उसकी परिभाषा हमने क्या दी थी, उसका क्या अनुवाद था, कि वो योग जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। अव्ययम का अर्थ है जिसका कभी व्यय नहीं हो सकता। तो ये प्रश्न उठना चाहिए था हमारे अंदर कि नहीं, कि भगवान ने पिछले श्लोक में योग को कह दिया है कि वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, और आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं योगो नष्ट, क्या माजरा है भाई, कैसे इसे समझा जाए? समझ में आ रहा है? प्रश्न वैलिड है, वाजबी है, जायज है पूछना, है ना? परिप्रश्न इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, परिप्रश्न, परंतु प्रणिपात और सेवाया के साथ। तो अब इसको समझने के लिए हमने आपके सामने एक उदाहरण रखा है, यह है चंद्रमा। और चंद्रमा के जो अलग अलग प्रहर होते हैं उसको अंग्रेजी में कहते हैं वैक्सिंग एंड वेनिंग मून, है ना, अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से फिर अमावस्या, 15 दिन का साइकिल, है ना। तो अब यदि आप चंद्रमा के इस साइकिल को देखो कि पूर्णिमा के दिन तो पूर्ण चंद्र दिख रहा है और अमावस्या के दिन अंधेरी रात, कहां गया चंद्रमा नष्ट परंतप, क्या ये कहेंगे? क्या ये कहना वाजिबी है कि अमावस्या के दिन तो चंद्रमा नष्ट हो गया और धीरे धीरे अमावस्या के बाद जिसको कहते हैं क्रेसेंट मून से शुरुआत जो हुई, अब पूर्णिमा तक, हा अब आ गया चंद्रमा, अब आ गया चंद्रमा। न तो कभी नष्ट होता है न हमारे सामने जिस प्रकार से हम सोच रहे हैं प्रस्तुत होता है, चंद्रमा वही है, वो भी पूर्ण चंद्र वही है। तो ये वैक्सिंग वेनिंग मून क्या है? क्या चंद्रमा कोई जाके बीच बीच में उसको काटते जा रहा है? हाँ, कि पूर्णिमा के बाद अब थोड़ा भूख लग रही तो खा लूं, कोई प्लैनेट जाके बीच में खा रहा है उसको, या कोई पेंट कर रहा है, हाँ पूर्णिमा है पूरा पेंट कर दूं उसको, नहीं। तो जैसे चंद्रमा हर समय अपने पूर्ण रूप में रहता है, केवल हमारी आंखों को वो वैक्सिंग और वेनिंग के रूप में दिखता है, कम होते हुए और बढ़ते हुए, वैसे ही भगवान का दिव्य ज्ञान चंद्रमा के तरह हर समय विद्यमान है। केवल कुछ काल के प्रभाव से हमें दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। The full moon is always manifested. It is just that we are not able to see. केवल हम नहीं देख पा रहे। तो भगवान का दिव्य ज्ञान कभी नष्ट नहीं हो सकता, परंतु उसकी जो प्रस्तुति है उसका जो, हरे कृष्णा, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? परीक्षित प्रभु मिल गए जो ढूंढ रहे हैं जिसको। तो भगवान का दिव्य ज्ञान उसी प्रकार से, इसलिए हमें इसमें असमंजस में नहीं पड़ जाना चाहिए कि भगवान ने योग अव्ययम कहा पिछले श्लोक में, अब इस श्लोक में योग नष्ट बोल रहे हैं। योग नष्ट का अर्थ है कि वही चंद्रमा जो दिव्य ज्ञान का चंद्रमा जो है वो केवल दिखाई नहीं दे रहा है। एक और उदाहरण, परंपरा, इसे हम आज के कोई रेलेवेंट एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, यहां पर इतनी बत्तियां जली हुई हैं, ये सारी बत्तियां कहां से और क्यों जल रही? बिजली तार, कई तार तो दिखाई भी नहीं दे रहे, कंसील्ड वायरिंग है, बल्ब भी दिखाई नहीं दे रहा, लैम्प शेड दिखाई दे रहा है केवल, लेकिन रोशनी सब जगह विद्यमान है। तो रोशनी सब जगह विद्यमान है, तारे दिखाई नहीं दे रहे, परंतु ये हम सब बिना किसी शंका से एक मत होकर कहेंगे कि बिजली आ रही है ना, लाइट है, क्या बोलते हैं, लाइट है, तारों के अंदर बिजली है। और वो तार कहां से कनेक्टेड है? यहां पर जो तार हैं वो तार कहां से कनेक्टेड है? टावर, टावर से कनेक्टेड है। टावर किस से कनेक्टेड है? पावर हाउस। तो पावर हाउस कौन है? अभी परंपरा, अभी अगर हम परंपरा का उदाहरण समझने की कोशिश करें, कृष्णा इज द पावर हाउस ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, वहां से पावर जनरेट होके भेजा जा रहा है, सप्लाई वहां से है। और फिर जो टावर है वो कौन है? जो पिछले इतने सारे लिस्ट गुरुजनों की प्रामाणिक परंपरा में, संप्रदाय में जो गुरुवर्ग, उनकी तुलना किससे? वो जो बड़े बड़े टावर, कहां से आप देखो कि कई बार पावर हाउस कितना दूर रहता है, यहां पर कहां है? एकलारा दूर है, यहां पर हमको रोशनी मिल रही है, एकलारा दूर है। तो वहां से जो अलग अलग इतने सारे टावर कनेक्ट हो रहे हैं, केवल टावर खड़े रहते हैं क्या उससे बिजली मिल जाएगी? हाँ, टावर खड़ा कर दिया बस नहीं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वो टावर एक दूसरे से कनेक्टेड किससे हैं? इलेक्ट्रिक वायर्स, और वो फाइनली कनेक्टेड है पावर हाउस से। और क्या बाकी रह गया? यहां का जो सॉकेट है, अभी अपने कमरे वाला जो सॉकेट है, वो कौन है? वर्तमान गुरु, प्रेजेंट गुरु, वो है हमारे कमरे का सॉकेट। तो कैसे पता चलेगा कि कमरे का सॉकेट पावर हाउस से कनेक्टेड है कि नहीं? या कैसे समझ में आएगा कि प्रेजेंट गुरु भगवान श्री कृष्ण के परंपरा में आ रहा है कि नहीं? पहले सॉकेट का एग्जांपल लेते। दिख रहा है सॉकेट, दिख रहा है एकदम अच्छा, ली ग्रैंड का हाईटेक सॉकेट दिख रहा है, बड़ा वाला। कैसे समझ में आएगा कि ये कनेक्टेड है कि नहीं, पावर हाउस से कनेक्टेड है कि नहीं? उंगली डाल के देखो क्या होगा? झनझनाहट आपके अंदर, परिवर्तन आएगा, है कि नहीं? परिवर्तन। तो प्रेजेंट गुरु बोनाफाइड गुरु है कि नहीं, कैसे समझ में आएगा? वो आपके अंदर परिवर्तन लाता है कि नहीं, है ना? जैसे मुझे याद है बचपन में रोज हमको कहा जाता था कि स्कूल की यूनिफॉर्म को इस्त्री कर कर पहनना चाहिए। तो फंक्शन था तो इसलिए हमको जबरदस्ती बोला गया कि कल तो पूरा यूनिफॉर्म धोया हुआ इस्त्री कर कर पहन कर जाना है। तो 11 बजे तक इस्त्री कर रहे थे पूरे यूनिफॉर्म को, और फिर मैं सो गया तो उसकी जो लाइट ऐसे जली हुई दिख रही थी, वो होती ना रेड लाइट उसमें इस्त्री में, तो मुझे बोला गया कि अरे वो चालू है, उसको बंद करो। मैंने स्विच बंद कर दिया। बोला नहीं, वो प्लग से निकालो, गलती से अगर चालू हो गया तो प्लग से निकालो, उस सॉकेट से निकालो। अब मैं थोड़ी नींद में था तो मैंने ऐसे उंगली डाली तो पूरा वो जो करंट है, पूरा करंट मेरे अंदर से पार होते हुए जमीन में, अर्थिंग था पूरा जमीन में। तो उसके बाद 2 घंटा मुझे नींद नहीं आई। इसको बोलते हैं परिवर्तन। वैसे ही प्रेजेंट गुरु कितना इलेक्ट्रिफाइड है या कितना कनेक्टेड है पावर हाउस से कि वो आपकी नींद उड़ाए। जैसे मेरी नींद उड़ गई ना, उसमें वो आपकी नींद उड़ाए। कौन सी नींद? तमोगुण में जो जीव जागो, जीव जागो, जब सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए जो प्रेजेंट गुरु हैं उनके अंदर वो वाली शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर परिवर्तन लाने। जैसे कि यहां पर ये सब कनेक्टेड है सॉकेट से, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, सब पीछे सॉकेट लगे हुए हैं, सब प्लग पॉइंट पीछे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन कैसे समझ में आ रहा है कि ये कनेक्टेड है यहां के इस कमरे के प्लग पॉइंट से? परिवर्तन। क्या परिवर्तन दिख रहा है? कि पहले वो जो लोटिया बल्ब, वो बल्बन था, कनेक्ट होते ही जगमगा उठा। क्या हुआ उसके अंदर? परिवर्तन। तो मुद्दा क्या है सबसे महत्वपूर्ण? कि मेरे जीवन का प्रेजेंट वर्तमान गुरु प्रामाणिक है कि नहीं, पावर हाउस से कनेक्टेड है कि नहीं, मेरे अंदर वो परिवर्तन ला रहा है कि नहीं। जैसे कि अर्जुन के अंदर भगवान ने प्रामाणिक ज्ञान देने के बाद अर्जुन के अंदर परिवर्तन आया, नष्ट मोह स्मृतिर लब्ध्वा त्वत् प्रसादात् मया चित स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। वही अर्जुन जो कह रहे थे न योत्स्यति गोविंद, मैं नहीं लड़ूंगा हे गोविंद, वही अर्जुन में परिवर्तन क्या आया, करिष्ये वचनम तव। तो इस उदाहरण से समझ में आता है कि हमें, कई बोलते हैं ना कि जब तक कृष्ण आके मुझे गीता नहीं सुनाएंगे ना, मैं भगवत गीता नहीं पालन करूं, उन्हें आने दो, उन्हें सुनाने दो। तो ये वैसा ही हुआ कि जब तक मेरे घर के सामने पावर हाउस, इकलारा का पावर हाउस यहां पर नहीं आता, मैं बिजली चालू नहीं करूंगा। बैठा रहे भैया, बैठा रहे अंधेरे में, उसको बुद्धिमता नहीं बोलते। तो और पावर हाउस आ भी गया तो तू संभाल पाएगा पावर हाउस को? तो भगवान अर्जुन थे वो संभाल पा रहे थे भगवान कृष्ण को। तो अगर पूरा इकलारा बोला कि ठीक है भैया तेरे 2 BHK किचन में हम पावर हाउस एस्टेब्लिश करेंगे, रह ले कहां रहेगा अभी। तो इसलिए ये बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से हम समझ सकते हैं कि परंपरा का जो ज्ञान है, तो क्या ध्यान में रखना, अगली बार जब भी आप पावर ये टावर्स देखो, इलेक्ट्रिक टावर्स देखो, तार देखो, तो क्या ध्यान में आना चाहिए कि हाँ सब बड़े बड़े गुरु खड़े हुए हैं, दिव्य ज्ञान यहां से जा। और इकलारा अगर जाओ तो अरे भगवान श्री कृष्ण पावर हाउस यहां पर है। भगवान श्री कृष्ण से हम हर प्रकार से संबंधित हो सकते हैं। तो ये उदाहरण है परंपरा का। अब ज्ञान एवं ज्ञान परंपरा, देखिए पिछले श्लोक में भगवान ने ज्ञान के विषय में कहा, आज के श्लोक में भगवान ज्ञान परंपरा के विषय में बोल रहे हैं। तो दोनों में कोई अंतर है? ज्ञान और ज्ञान परंपरा में कोई अंतर है? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। तो ज्ञान हो गया थियोरिटिकल नॉलेज और ज्ञान परंपरा प्रैक्टिकल नॉलेज। कि हां जैसे कि कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर को ज्ञान हो गया कि कोई बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है, ज्ञान हो गया, ज्ञान पूरा अर्जित कर यदि वो कमरा बंद कर बैठा है, बस सालों साल अंदर बैठा है, तो उसको ज्ञान परंपरा नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब उस ज्ञान को वो आगे नहीं बढ़ा रहा कि कोई बीमार व्यक्ति आता है तो उसको ठीक करने के लिए जो उसने इतना अर्जित कर रखा है ज्ञान, उसको कैसे बांटेगा वो, उसको बताएगा भैया मैंने जो 5 साल सीखा उसके अनुसार तुझे बीमारी है और तेरे लक्षणों के अनुसार ये औषधि है, उसे कहते हैं अब ज्ञान परंपरा प्रैक्टिकल। उसको बोलते हैं ना डॉक्टर प्रैक्टिसेस, पूछते ना हम डॉक्टर को, डॉक्टर आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, कभी ये नहीं पूछते डॉक्टर थियरी कैसी चल रही है। अरे थियरी तो हो गई, अब क्या है प्रैक्टिस कैसे चल रही है। तो ज्ञान और ज्ञान परंपरा, देखो इनमें महत्वपूर्ण परंपरा ज्यादा है ज्ञान परंपरा। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग इसको क्यों विभाजित कर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग विशेष रूप से भारत में वो कहते ज्ञान हो गया ना बस, परंपरा क्या जरूरत है, ज्ञान हो गया तो डिग्री लेके बैठे रहो घर पर, उसको अप्लाई करना वो है परंपरा। तो यहां पर हम ज्ञान और ज्ञान परंपरा को यदि 2 उदाहरणों से समझें, तो एक है ठहरा हुआ जल, किसी सरोवर में ठहरा हुआ जल, वो भी जल है परंतु ठहरा हुआ है, वो है ज्ञान। और बहता कलकल पानी वो क्या है? ज्ञान परंपरा। तो जब हमारे जीवन में ज्ञान पारंपरिक तरीके से हम प्राप्त करते हैं और पारंपरिक तरीके से उस ज्ञान को जब हम आगे बढ़ाते हैं, तो समझना चाहिए कि वो ऐसा बहता पानी है जो कभी सड़ेगा नहीं। क्यों ये उदाहरण प्रस्तुत किया गया है? क्योंकि ठहरा हुआ जल कुछ समय बाद बदबू देने लगता है, उसके अंदर काई, क्या क्या अलग अलग प्रकार की चीजें उसके अंदर आती रहती हैं, कीड़े, ये सब कुछ। इसलिए ज्ञान को जब कोई केवल ठहरा कर रखता है तो वो ठहरे हुए जल के समान है, परंतु पारंपरिक तरीके से जब उसको बांटा जाता है, जैसे भगवान कह रहे हैं आज के श्लोक में, इमम राजर्षयो विदुहु, ये ज्ञान मैंने जो उनको दिया उन्होंने केवल अपने अंदर समाकर बंद कर नहीं रखा, उसे उन्होंने बांटा, उन्होंने दूसरे राज ऋषियों को दिया। और इस परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है ये उस बहती नदी के समान है। अंग्रेजी में कहावत है, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस एंड स्टोन्स रोल ओनली इन रोलिंग रिवर्स, इन फ्लोइंग रिवर्स। तो ये अंतर है ज्ञान और ज्ञान परंपरा। एक और तरीके से ज्ञान और ज्ञान परंपरा को समझा जा सकता है। ज्ञान है यहां पर थियोरेटिकल फेथ, कि हां ज्ञान अर्जित कर लिया कि अब विश्वास हो गया कि हां हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। परंतु जब हम उसे पारंपरिक तरीके से बांटते हैं तो वो बनता है एक्सपीरियंशियल फेथ। पुस्तकीय ज्ञान और साक्षात्कारी ज्ञान, या पुस्तकीय विश्वास और साक्षात्कारी विश्वास। कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? ये उदाहरण से समझ में आएगा, अब थोड़ा कलरफुल दिख रहा है। वाकिफ है आप लोग रसगुल्ला, रसगुल्ला बंगाल में बोलते हैं। ओह, हमारे ऑथेंटिक बंगाली हैं यार। तो अब ज्ञान और ज्ञान परंपरा में अंतर, अभी देखो, मान लो कि अनाउंस किया जाए कि अगले बुधवार को सेमिनार होगा रसगुल्ले के ऊपर, डेढ़ घंटे का सेमिनार है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वीडियो के साथ, किसके ऊपर है? रसगुल्ले के ऊपर। तो आप लोग एकदम तैयारी में आए हो, चम्मच वम्मच लेके, शायद कटोरी चम्मच लेकर तैयारी में आए, और यहां पर सेमिनार शुरू हुआ कि रसगुल्ले की शुरुआत होती है घास से। घास से? क्योंकि जो घास को गाय खाती है वो घास परिवर्तित होता है दूध में, वो दूध गाय का जब निकाला जाता है तो उस दूध का जब पनीर बनाया जाता है, छिन्ना बनाया जाता है, तो उससे फिर गोलाकार में, और गोलाकार इस प्रकार से होता है कि वो दिखने में एकदम उत्कृष्ट दिखे, और फिर शक्कर का पाक बनाया जाता है। शक्कर कैसे बनती है अब आपको बताएंगे, तो पूरा इलैबोरेट सेमिनार, शक्कर कैसे बनती है, शक्कर का पाक कैसे बनता है, फिर वो गोलाकार में अब जो वो फटा हुआ दूध जो पनीर में परिणित हुआ है उसको शक्कर के पाक में डालकर इस प्रकार से उसमें केसर केसर का फ्लेवर डालते हुए, और अगर आपको चाहिए तो वनीला एसेंस भी उसके अंदर हम डाल दें, और इस प्रकार से जब आप उसको हाथ में, और पकाया भी जाता है, भूल गया मैं बताना, पकाया जाता है उसको, उसको पकाया जाता है, और इस प्रकार से पकाया जाता है, ऐसे टेम्परेचर पे पकाया जाता है पाक को और उस गुल्ले को भी। अभी तक रस अलग है, गुल्ला अलग है, इसलिए अभी तक हम नहीं कहेंगे कि रसगुल्ला हुआ है, क्योंकि दोनों का मिलन अभी तक नहीं हुआ है। तो अभी रस अलग है, अभी गुल्ला अलग है। तो अब गुल्ला तैयार हो चुका है पूर्ण रूप से, उसका जो आकार है वो अपने शेप को ले रहा है। हाँ, अब वो गर्भ से अंडे से बाहर आ गया, एकदम गोलाकार में है, और अब पाक भी हमारा, रस भी तैयार हो रहा है, और दोनों का मिश्रण। अब जब आप उसको उठाते हो आपकी दो उंगलियों में, एकदम हल्का फुल्का लग रहा है, आपकी दो उंगलियों में आपने उठाया, थोड़ा दबा कर देखा रस उसके अंदर समाया है कि नहीं, तो उसके रोम छिद्र से जो रस उसके अंदर गया है आपने दबा कर देखा, और रस सब ओर से बाहर आ रहा है, तब आपको अब विश्वास हो रहा है कि ये अब रसगुल्ला अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर चुका है। बस सेमिनार खत्म। आपको कटोरी और चम्मच, तो इतना इलैबोरेट हमने घास से शुरुआत की, घास से गन्ने से शुरुआत की, गन्ना अर्थात शक्कर, जहां से, तो वहां से शुरुआत करते हुए यदि हम केवल वहां तक ले जाए, आपने दो उंगलियों में लिया और उसके बाद में आपको खाने ही नहीं दिया, बोले है कहां भाई, रसगुल्ला किधर है? तो ज्ञान परंपरा क्या है कि हां, सेमिनार के पश्चात फिर सबके कटोरी में एक एक रसगुल्ला, उसको बोलते हैं ज्ञान परंपरा, एक्सपीरियंशियल। फिर जब आप उसको अपने दोनों उंगलियों में या चम्मच से अपने मुंह में डालते हो, तो जो भी आपने सेमिनार में डेढ़ घंटे तक सुना, घास से लेकर अब जो कटोरी में आपके अंदर है, पूरा कंफर्म्ड हो जाएगा कि हां, अब पूरा विश्वास हो गया, रस और गुल्ला एक साथ अंदर। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंशियल फेथ। तो हमारे जो शास्त्र हैं वो ज्ञान के साथ, ज्ञान परंपरा में हमको क्या दे रहे हैं, नॉट जस्ट थियोरी बट एक्सपीरियंशियल फेथ, कि अनुभव करो उसको, अनुभवी ज्ञान, अनुभवी विश्वास, उसको अनुभव कर कर फिर। इसलिए पूरी भगवत गीता में आप देखिए, भगवान ने अर्जुन को पूरी गीता सुनाने के बाद अर्जुन को कहा, सर्वबद्धर्मान परित्यज्य, कि अर्जुन तुम सब कुछ जान लो, दिव्य ज्ञान, अष्टांग योग, कर्म योग, सब कुछ जान लो, और उसके पश्चात फिर तुम डिसाइड करो कि तुम मुझे शरणागत होगे कि नहीं। कोई जबरदस्ती नहीं, उसके पश्चात भी भगवान ने कह दिया यथेच्छसि तथा कुरु, हे कुरु अब तुम निर्णय लोगे कि तुम्हें करना क्या है। कैसे निर्णय लोगे? तुम्हारे अनुभव से, जो तुमको ज्ञान मिला है उसका अनुभव करो और फिर तुम निर्णय लो। तो इसलिए एक्सपीरियंशियल फेथ। अब प्रश्न यह है कि क्या हमारे वेद ब्लैक एंड व्हाइट है? ब्लैक एंड व्हाइट मतलब, हाँ, पत्थर की लकी। अब यहां पे जो इमेज है वो तो कलर्ड दिख रहा है पूरा, हम उस प्रकार के ब्लैक एंड व्हाइट का अर्थ नहीं कर रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट जैसे उन्होंने कहा पत्थर की लकीर, कि ये कह दिया तो बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। ब्लैक मतलब ब्लैक, व्हाइट मतलब व्हाइट, ब्लैक अलग व्हाइट अलग, ब्लैक ऑपोजिट ऑफ व्हाइट, व्हाइट ऑपोजिट ऑफ ब्लैक। क्या हमारे वेद उस प्रकार से हैं? इसका जवाब इस उदाहरण से हम जान पाएंगे। तो यदि ये प्रश्न मैं आपको पूछूं कि सूर्य का उदय हर रोज कहां से होता है? शर्माइए मत, अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग, पूरब से, ईस्ट। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, पूरब से सूर्य उदय होता है। नो सर, आपका क्या मत है? ओके okay. आप तो बहुत आगे चले गए, हम आपकी लेवल तक नहीं है अभी। तो हम थोड़ा हमारी लेवल पर चर्चा करते हैं। अब देखिए, हां ये हम कह सकते हैं कि सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, बट अकॉर्डिंग टू सीजन्स देर इज अ शिफ्ट, देर इज अ, सो देर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट थिंग दैट सन राइजेज ओनली फ्रॉम दिस पॉइंट इन द ईस्ट। इन द समर सीजन यू विल सी इट इज शिफ्टेड अ लिटिल बिट इन द ईस्टर्न होराइजन, इन द विंटर सीजन यू विल सी इट इज शिफ्टेड अ लिटिल बिट, है ना? सो हियर इन व्हाट आर वी कमिंग टू द कंक्लूजन दैट जस्ट लाइक सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, देर आर मेनी शेड्स ऑफ ग्रे इन बिटवीन। सिमिलरली व्हेन वेदर्स व्हेन दे से अ वैदिक इंजंक्शन, शास्त्र का कोई निर्देश होता है, तो उसमें भी हमको किस प्रकार से समझना है? जब कोई कह दे, टीचर बोल दे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, उसको हमको इंटेलिजेंटली कैसे समझना है? सीजनली इट हैज इट्स शिफ्ट विच इज रिक्वायर्ड। सो इट्स नॉट दैट द टीचर इज सेइंग समथिंग रॉन्ग, बट टू थिंक अरे टीचर ने तो बोला था कि ईस्ट से उगता है, मैंने तो विंटर में देखा वो थोड़ा शिफ्ट हो गया, गलत है टीचर, बकवास है। नहीं, हमें उसको बुद्धिमत्ता से समझना है। तो हमारे शास्त्र भी हमें ज्ञान उसी प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना आप, समझ रहे हैं? अब जब योगो नष्ट, ये बात हम इसके ऊपर फिर से गौर करेंगे, तो इसके दो कारण बताए गए हैं कि योग नष्ट होता है। सबसे पहले जब उस ज्ञान का पालन कोई नहीं करता तो वो नष्ट होता है, और दूसरी तरीके से नष्ट होता है, कैसे? मिस इंटरप्रिटेशन। अब देखिए कि मानो आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो आपको कोई कंप्यूटर चलाना सिखाता है, आपने सीख लिया, फिर आपने कंप्यूटर बंद कर दिया, अलमारी में लॉक करके रख दिया, 20 साल बाद आप खोल रहे हैं, तो क्या अनुभव करेंगे आप? आप देखेंगे ये अंदर कैसे आया, अलमारी खोलने के बाद याद भी नहीं होगा ये है क्या, ये कौन सी चिड़िया का नाम है, उसको चलाना तो छोड़ो। सो परंपरा इज लॉस्ट व्हेन इट इज नॉट फॉलोड। जब उसको आप रोज चलाओगे तो वो कंप्यूटर कैसे चलाना है याद रहेगा, और फिर आप परंपरा में आप बच्चे को भी सिखाओगे, मैंने जो सीखा बैठ मैं तेरे को सिखाता हूं। एक ये तरीका है योगो नष्ट का। दूसरा है मिस इंटरप्रिटेशन, कि हां आपने जो कंप्यूटर सीखा उसमें आपने कुछ अलग से अपना कारस्थान डाल दिया, और फिर उसको धीरे धीरे आप दूसरों को ये बोल रहे हो, मतलब किसी ने उसमें आता ना विंडोज, ओपन विंडोज, तो सब खिड़कियां खोल कमरे की, और वो अपने बेटे को भी सिखाता है, विंडो शटिंग डाउन मतलब सब खिड़कियां बंद कर पहले घर की। तो गलत यदि उसको वो सिखा रहा है तो परंपरा नष्ट हो रही है। जो उसने सीखा है गलत सिखा रहा है तो परंपरा नष्ट, नहीं सिखा रहा है तो भी नष्ट हो रही है। तो ये दो तरीके हैं। अब आप सामने मैं एक संस्कृत का श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूं, सरल है समझना। देखिए इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है। केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशव जानते हैं, पतितम अर्थात गिरे हुए, गिरे हुए केशव को देखा, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा मतलब देखा, गिरे हुए केशव को देखा पांडवा हर्ष निर्भरा। पांडव जो हैं एकदम हर्षित हो गए, किसको, केशव को गिरा हुआ देख। रुदंती कौरवा सर्वे, कौरव जो हैं वो रोने लगे केशव को गिरा हुआ देखकर, और क्या बोलने लगे, भो भो केशव केशव। क्या समझ में आपको जो मैंने बताया आपको, केशव को गिरा हुआ देख पांडव हर्षित हुए, वहीं केशव को गिरा हुआ देख कौरव रोने लगे। हाँ अच्छा, अब यहां पर इसका असली अर्थ यह है कि कह शव, नदी में शव को जाता देख, नदी में शव को गिरा हुआ देख पांडव। एक और अर्थ पांडव का होता है मछलियां। तो मछलियों ने जब शव को बहता हुआ देखा हर्ष निर्भर, खुश हो गई मछलियां। क्यों, क्योंकि उनका संडे फीस्ट आ गया। रुदंती कौरव सर्वे, जितने कौवे पेड़ पर उस नदी के आसपास थे ना, रुदंती, वो रोने लगे, अरे भो भो शव कह शव कह शव, भो 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 करने लगे, जा रहा है हमारा फीस्ट जा रहा है। ये इसका मतलब है। नहीं तो होता क्या है कि हमको लगा ऐसे कैसे हो सकता है, कौरव खुश, कौरव रो रहे हैं, पांडव खुश हो गए, गड़बड़ है। नहीं, क्योंकि वो उनके बारे में डिस्कस ही नहीं किया जा रहा है। अब देखिए कैसे मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। एक बार घर में पति आए शाम को, पत्नी को पूछते हैं खाना क्यों नहीं बनाया, पत्नी ने कहा मैं गिर गई और लग गई। तो उसने पूछा गिर गई लग गई, कहां गिर गई और क्या लग गई, बस गिर गई लग गई, तो कहां गिर गई और क्या लग गई, तकिए पे गिर गई, नींद लग गई। तो जब पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है तब समझ में आया कि गिरने का अर्थ क्या था, लगने का अर्थ क्या। नहीं तो अभी तक क्या समझा कि अरे भाई कहीं चोट लग गई, कहां गिर गई। तो इंटरप्रिटेशन जो होता है, इंटरप्रिटेशन अगर गलत तरीके से किया जाए तो वो परंपरा को या ज्ञान को नष्ट करता है। परंतु सही इंटरप्रिटेशन, जैसे जो अर्थवाद होता है, अर्थवाद के वजह से जो सही अर्थ है वो उससे अलग हटके, जैसे ये श्लोक है, बहुत से लोग भगवत गीता के कुछ श्लोक लेके खुद का ही, मैंने कहा ना एक व्यक्ति मुझे कह रहा था गीता में, आपके गीता में भगवान ने चाय पीने के लिए बोला है माया चापी त्वया चापी। भगवान गीता में बोले हैं, केवल इतना नहीं बोले कि त्वया चापी केवल इतना नहीं बोले कि तू भी चाय पी, बोले मैं भी पी रहा हूं. मतलब उनका ये इंटरप्रिटेशन था कि भगवान ने जो गीता सुनाना प्रारंभ किया अर्जुन को, तो बीच में टी ब्रेक हुआ होगा. इतने टाइम से सुना रहे हैं तो अर्जुन चल चाय पी के, है ना, उधर कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन चलते हैं चाय पीने. तो लोग दोनों रेलवे स्टेशन की ओर गए, वहां पे चाय पट टपरी की दुकान थी, वहां पर फिर श्लोक कंटिन्यू हुआ. तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, त्वया चापि मया भी चापि. एक ने तो हद कर दी, जो हमने श्लोक लिया था 15वें अध्याय का, उसने कहा कि भगवान बोल रहे हैं सर्वस्य चाहम, सभी लोग क्या कहो क्या पियो, चा सर्वस्य चा अहम, मैं भी पी रहा हूं. और वो भी कौन सी, रिधि सन्निविष्टौ, स्टव पे बनी हुई, स्टव पे बनी हुई चा. तो ये है अर्थवाद, जिसके वजह से योगो नष्ट. अब सकालेनेह महता, भगवान कह रहे हैं कि काल के प्रभाव से, अब यहां पर दूध का उदाहरण हम देते हैं कि काल के प्रभाव से दो चीज होती, एक तो कोई भी वस्तु में परिवर्तनशीलता दिखती है और विनाश काल के प्रभाव से. जैसे हमारा शरीर, हम इसकी चर्चा कर रहे थे, हमारा शरीर कैसे परिवर्तनशील पैदा होते ही काल के वजह से इसके अंदर परिवर्तन दिखता है और फिर अंत में विनाश. तो दूध का उदाहरण उपयुक्त है. दूध के उदाहरण से क्या समझ में आ रहा है कि एक तो फटा हुआ दूध, दूध के अंदर परिवर्तन कैसे कि फट जाता है दूध, अब वो दूध नहीं रहा, अब उसकी कोई चाय नहीं बना सकता, अब रसगुल्ला बनेगा. और विनाशकारी दूध किसे बोलेंगे, वो दूध जिसको सर्प ने चख लिया. तो सर्प जिस दूध को चख लेता है वो दिख रहा है दूध, लेकिन अब वो विषैला हो गया है, अब वो दूध विषैला हो गया. तो यहां पर ये उदाहरण से हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञान परंपरा के अंदर जब परिवर्तन कोई लाता है तो परिवर्तन लाने का अर्थ है कि यदि शास्त्र के अनुसार, मतलब पारंपरिक तरीके से परिवर्तन अगर नहीं ला रहा और स्वयं मनगढ़ंत कुछ उसके अंदर परिवर्तन ला रहा है तो वो उस दूध को फाड़ रहा है. और कई हैं जो गलत, जो भगवान ने बोला है उसका ठीक विपरीत, जैसे कि हमने वो चाय का उदाहरण, ठीक विपरीत वो क्या है कि वो अपने दूषित चेतना से उस शुद्ध दूध को विषैला कर रहे हैं. प्रभुपाद ने उदाहरण दिया था कि मिल्क टच्ड बाय सर्पेंट बिकम्स पॉइजनस, सिमिलरली दोज पीपल हु have ill intentions, they poison the pure Vedas. Like that. तो सकाले ने है का अर्थ ये है. इसलिए प्रभुपाद ने बहुत ही categorically, obviously, भगवद गीता का शीर्षक क्या दिया, as it is. यथा रूप जशी आहे तशी, not as I feel like, not what you feel like, but what Krishna has. इसलिए प्रभुपाद अक्सर कहते थे, ये जब देखते थे कि कई लोग अलग अलग अपनी अपनी गलत टीकाएं दे रहे हैं गीता के ऊपर, तो प्रभुपाद कहते थे कि if you want to write your own book, write your own book, why you use Krishna's Bhagavad Gita, that name? क्यों क्यों यूज करते हैं भगवद गीता का नाम, क्योंकि वो अगर कुछ बुक लिखेंगे तो कौन खरीदने वाला है पढ़ने के लिए. हाँ, भगवद गीता मेरे अनुसार। तो बोलो भगवत गीता ब्रांड नेम क्या है? भगवत गीता। उसके अंदर फिर वो लगा रहे हैं कि मेरे अनुसार भगवान जो गीता में कह रहे हैं मन मना भव मत भक्तो, वो शायद मैं ही हूं। हाँ बहुत लोग, मैं ही हूं वो, मेरा भजन करो, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम। तो इसलिए प्रभुपाद ने एज इट, और प्रभुपाद के परपोर्ट्स में आप देखो कि प्रभुपाद कितना हर एक परपोर्ट में कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन, सो कृष्णा सेज दिस, सो अष्टांग योगा इज मेंट टू प्लीज कृष्णा, ज्ञान योगा इज मेंट टू प्लीज कृष्णा। क्यों प्रभुपाद कृष्ण के ऊपर इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं? क्योंकि समझना है कि ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है जो यथारूप उन्होंने प्रस्तुत की। अब हम देखते हैं कि जो ये वैदिक ज्ञान है और वेदों के बाहर का जो ज्ञान दिया जाता है, उन दोनों में अंतर क्या है? तो वैदिक ज्ञान वो इंस्पिरेशनल, इसलिए वैदिक ज्ञान के अंदर स्टेट स्पेसिफिक अंग्रेजी में उसको कहते हैं कि व्यक्ति के अनुसार ज्ञान दिया जाता है, परंतु हम बाकी के धर्म ग्रंथ यदि देखें तो उसमें ज्यादा एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल के तरह सारे इंजंक्शंस होते हैं। Thou shall not kill, Thou shall not commit adultery, Thou shall not, मतलब जैसे कि नियमावली होती ना, नियमावली, बस नियम 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 नियम, इसलिए उनके अंदर उनको रस नहीं मिलता। हम इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इंडिया में उपन्यास पहले कोई पढ़ता ही नहीं था। उपन्यास जानते हैं ना, नॉवल, पहले कोई नहीं पढ़ता था। क्यों? क्योंकि जो नॉवल के अंदर आप ढूंढते हो, क्या ढूंढते हो? कोई एकदम मजेदार स्टोरी, सस्पेंस, थ्रिल, हॉरर, वायलेंस, कॉमेडी, सब कुछ जो उपन्यास में कोई व्यक्ति ढूंढता है वो सब हमारे शास्त्रों में है। रामायण महाभारत में तो सब कुछ है, एक महाभारत में सब कुछ है, पॉलिटिक्स, वायलेंस, ह्यूमर, हॉरर, सारे इमोशंस जो हैं कोई उपन्यास में ढूंढता है। तो पहले इंडिया में अंग्रेज आने से पहले ये उपन्यास कोई पढ़ता नहीं था, सब रामायण महाभारत पढ़ते थे, बिकॉज इट्स अ नीड टू कनेक्ट टू ऑल दीज इमोशंस, इट्स अ नीड, साइकोलॉजिकल नीड। और क्योंकि पाश्चात्य देश में उनके ग्रंथों के अंदर कोई स्टोरी नहीं है, खाली लाइन से कमांडमेंट्स कमांडमेंट्स कमांडमेंट्स, ये मत करो ये मत करो, यहां ये, तो इतना बोरिंग, इसलिए उन्होंने नॉवल, ये जो नॉवल का कॉन्सेप्ट चालू किया कि हाँ हम इसमें तो कोई इतनी बोरियत हो रही, समझ में नहीं आ रहा है और मजा भी नहीं आ रहा, तो इसलिए हम उपन्यास लिखेंगे। तो फिर लोग उपन्यास पढ़ना शुरू किए कि उसके अंदर कुछ तो उनको रस मिल रहा था पढ़ने में। तो इसलिए ये जो अंतर है इंस्पिरेशनल और इंस्ट्रक्शनल, क्यों मैं ये बता रहा हूं, घबराइए मत, समझाऊंगा मैं इसको, क्योंकि प्रभुपाद ने जो अलग अलग उनके कई ऐसे फ्रेजेस उन्होंने यूज किए, प्रभुपाद ने जैसे कहा बुक्स आर द बेसिस, मतलब ज्ञान जो है वो बुनियाद है। वैसे प्रभुपाद ने एक फ्रेज यूज किया था, यूटिलिटी इज अ प्रिंसिपल, अर्थात शास्त्र जो है भगवान ने इस प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत किए, जैसे हमने सूर्य का उदाहरण लिया था कि सूर्य पूरब से उगता है परंतु उसमें भी मौसम के अनुसार बदलाव होता है। सिमिलरली अवर स्क्रिप्चर्स आर फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस एंड पीपल। तो ये उदाहरण है कि एक व्यक्ति जिसको ऊंचा सुनाई देता था, तो वो गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने देखा है उसके कान को चेक किया, और चेक करने के बाद डॉक्टर कहता है कि भाई तुमको तो वो हियरिंग एड लगाना पड़ेगा। तो उसने पूछा, अच्छा तो कितने का हियरिंग एड आता है? तो उसने कहा 15,000 का है, शुरुआत है 15,000 से लेके 15 लाख तक, अलग अलग रेंज के। इसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो इसने क्या किया, ये घर गया, वॉकमैन का जो ईयरफोन होता है वो काटा, हैंगर का हुक होता है उसको फिक्स किया और कान में इधर लगा लिया। हैंगर का हुक ये दिख रहा है ना आपको, हैंगर का हुक वो ईयरफोन के अंदर, ईयरफोन का जो दिखता है स्पीकर टाइप, उसके अंदर डाल के इसको यहां लगा लिया और ऐसे घूमता था और उसको सब सुनाई दे रहा था। आप पूछोगे कैसे, क्यों? क्योंकि जब लोग उसको देखते थे तो जोर से बोलते थे, कि इसको ये लगा रखा है, इसको शायद ऊंचा सुनाई दे, तो जोर से अरे कबा जोर से बोलते थे। अगर वो नहीं होता तो लोग अपने रेगुलर वॉल्यूम में बोलते थे तो उसको सुनाई नहीं देता था। तो उसने ये सोचा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता वो 15,000 का हियरिंग एड्स, तो मैं ये लगा लूंगा तो दूसरे जोर से बोलेंगे। इसको कहते हैं यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ये है वैदिक नॉलेज इंस्पिरेशनल। हरे कृष्णा, अभी समझ में आया कि यदि आप वैदिक इंजंक्शन को फॉलो नहीं कर सकते तो वो ब्लैक और व्हाइट के बीच में बहुत से ग्रे शेड्स हैं हमारे वैदिक स्कूल में। अगर आप 15,000 का हियरिंग एड अफोर्ड नहीं कर सकते तो दूसरे भी तरीके हैं, सुनाई देना है ना, मेन क्या है, अगले व्यक्ति की आवाज सुनाई देनी है, चाहे वो धीमे आवाज में बोले आप हियरिंग एड 15 लाख का लगाओ, या आप ऐसे ही कुछ लगाओ और वो जोर से चिल्ला के बोले, सुनाई दे रहा है ना आपको। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो अब हम कुछ उदाहरण लेंगे जिसके अंदर धर्म और अधर्म, कुछ उदाहरण, फेमस उदाहरण है ये धर्म और अधर्म की परिभाषा, या कैसे डिफाइन करें क्या धर्म है क्या अधर्म है। नारद मुनि ने वाल्मीकि मुनि को क्या जप करने के लिए कहा, मरा। अभी कहीं पे कोई परंपरा में अगर आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल में जाओ, अगर उस प्रकार से ग्रंथ को समझो, तो कहीं पे नारद मुनि को किसी राजऋषि ने, कभी भगवान ने भी नहीं कहा कि ये भी एक तरीका है जाप करने का। कहीं कोई स्क्रिप्चर्स में मेंशन नहीं है, कोई श्लोक नहीं है, कहीं कोई स्क्रिप्चर में कोई श्लोक नहीं है कि रामचंद्र जी का नाम इस प्रकार से भी लिया जा सकता है। तो इसको अब कैसे समझे कि नारद मुनि ने हमारे वैदिक ज्ञान को इंस्पिरेशनल तरीके से, क्योंकि वाल्मीकि मुनि उस समय एक डकैत थे रत्नाकर, और वो कोई और भाषा नहीं समझ पा रहे थे, तो नारद मुनि ने देखा ठीक है, आई हैव टू बी फ्लेक्सिबल नाउ। अब देखो बिल्कुल उल्टा है, राम का नाम और मरा, उल्टा लग रहा है ना, यही उल्टा अर्थ भी देखो, मरा मरा। तो नारद मुनि बाहरी दृष्टिकोण से क्या लग रहा है कि नारद मुनि ने क्या प्रेजेंट किया, समथिंग विच इज अगेंस्ट द परंपरा। नहीं, वैदिक परंपरा मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन फर्स्ट देन द डिटेल। तो यहां पर यह पूछा जाए कि क्या नारद मुनि ने वाल्मीकि मुनि को कोई अधार्मिक जाप करने के लिए दिया? नहीं, हम सब जानते हैं कि जिन्होंने रामायण लिखी उनकी शुरुआत यहां से हुई। दूसरा उदाहरण, वही नारद मुनि ने मृगरारी जो शिकारी था, जो अधमरा कर जानवरों को छोड़ दिया करता था, नारद मुनि ने उसको क्या कहा, पूरा मारो। तो कोई बोले नारद मुनि बोल रहे हैं हिंसा करने के लिए, पूरा मारने के लिए। वो शुरुआत थी उसके परिवर्तन की, किसके, मृगारी के परिवर्तन की वो शुरुआत थी। नारद मुनि ने जब उसको कहा कि पूरा मारो आधा मत मारो, तो मुरुगारे ने पूछा क्यों भाई, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पैंदा, पूरा मारो आधा मारो। तब नारद मुनि ने बताया कि क्या फर्क है दोनों में, पूरे उसको नर्क का विवरण दिखाया कि तू दुख दे देकर जो मार रहा है तेरे को कितनी यातनाएं होंगी, पूरा मारने से भी होंगी लेकिन आधा मारने से कितनी होंगी। तो उसकी बुद्धि थी उतनी, तो उसने पूछा कि तो फिर क्या करने से मुझे बिल्कुल नर्क की यातना नहीं भुगतनी पड़ेगी। नारद मुनि का हा अब आया ना लाइन, अगर पहले ही नारद मुनि बोलते कि ये ले माला, हरे कृष्ण महामंत्र, चार नियम, ये वो ऑल्टर लगा, ये वो, लाइक ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं भाई, तो उसके लेवल पर जाकर नारद मुनि ने उसको सबसे पहले बोला बेटा तू मार रहा है ना, पहले पूरा मार दो। तो उसको वो समझ में आया, वो भाषा उसको समझ में आई। तो बाहरी दृष्टिकोण से क्या लग रहा है, नारद मुनि उसको और हिंसा करने के लिए बोल रहे हैं, नहीं इंटेंशन वो नहीं। अब युधिष्ठिर महाराज का फेमस नरोवा कुंजरोवा कि युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला या भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से झूठ बुलवाया। तो उद्देश्य क्या था, सबसे पहले हमें उद्देश्य समझना है, और उद्देश्य को समझने के लिए, इस कथा को समझने के लिए हमें यह कथा समझनी है कि महाभारत में ही ये कौशिक मुनि की कथा है। कौशिक मुनि जिन्होंने प्रण लिया था कि वो जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य संकल्पी, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो कौशिक मुनि अपने आश्रम में रहते थे और एक दिन कुछ डकैत गाय के पीछे भाग रहे थे, गाय की हत्या करने के लिए, गो हत्या करने के लिए। तो वो गाय जितनी थी वो भागती भागती डरती उन डकैतों से कौशिक मुनि के आश्रम में छिप गई। डकैत पीछे आए, डकैतों ने पूछा कौशिक मुनि आपने गायों को देखा आते हुए। कौशिक मुनि अब सोच रहे हैं मैंने जो प्रण लिया है झूठ कभी नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा तो गाय की हत्या होगी, झूठ बोलूंगा तो मेरा जो रिकॉर्ड है ट्रैक रिकॉर्ड सत्य बोलने का खत्म हो जाए, नहीं मैं सत्य बोलूंगा। गाय इधर है आइए, छिपी हुई है मेरे आश्रम में। डकैत गए, उन्होंने गायों की हत्या कर दी। अब प्रश्न है कि क्या कौशिक मुनि का सत्य बोलना धर्म था या अधर्म। कर्ण और अर्जुन का निर्णायक युद्ध, ये भी एक बहुत प्रसिद्ध कथा। कर्ण का पहिया अटक गया भूमि में, कर्ण नीचे उतरे अपने पहिये को निकालने के लिए, तब भगवान ने अर्जुन को कहा अर्जुन ये निहत्ता है अब इसको मारो। अर्जुन भी सोचने लगे कि भगवान मुझे युद्ध की नीतियों के विरुद्ध कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगे कि मैं कैसे मार सकता हूं, ये निहत्ता है। भगवान कहे यह अभी मारो इसको। और जब भगवान ने जोर से अर्जुन को कहा कि तीर निकालो और इसको अभी खत्म करो इस कर्ण को, तो कर्ण वो भगवान श्री कृष्ण को बोलने लगा कि आप जो कि धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हो, आप जो कि धर्म के ज्ञाता हो, आप जो कि धर्म के राजा हो, आप यहां पर अर्जुन को बोल रहे हो कि अधार्मिक तरीके से मुझे मारो। कर्ण ने जब यह कहा तो भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कर्ण कौन से मुंह से तू धर्म की बात कर रहा है, कहां था तेरा धर्म जब द्रौपदी को उस असत सभा में लाने का आदेश तूने दिया था दुर्योधन को, कहां था तेरा धर्म जब दुर्योधन जैसा कुकर्मी भी नहीं सोच पाया कि द्रौपदी को नग्न करना चाहिए, तूने आदेश दिया था दुर्योधन को कि इस द्रौपदी को नग्न कर तेरी जांग पर बिठा, कहां था तेरा धर्म किस मुंह से तू धर्म की बात कर रहा है, तू लायक भी नहीं है धर्म के अनुसार मारे जाने के। अर्जुन अभी मार इसको, ये जिसके लायक है उस लायक उसको मार। अधिकांश लोग क्या सोचते हैं कि अरे बहुत बुरा हुआ कर्ण के साथ, बेचारा नियत्ता था, अत्याचार ना इंसाफी हुई। लेकिन जो जो उसने किया उसका जो इतिहास, वो भगवान ने उस समय अर्जुन को जब सुनाया तो अर्जुन का जो खून खौलने लगा, जब अर्जुन को ये सब, अर्जुन को पता था। और ये सत्य बात है कि दुर्योधन जैसा अधर्मी कुकर्मी, उसके मन में भी इतने गलत विचार नहीं आए थे जितने कर्ण के अंदर आए थे जब उसने कहा था कि इस द्रौपदी को नग्न करो। तो यहां पर कौन धर्म की बातें कर रहा था, कौन अधर्म की बातें कर रहा था, ये है समझने योग्य। तो इसलिए जब हम गुरु परंपरा में दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की बातें करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वो जो पारंपरिक ज्ञान है हमारे वैदिक ज्ञान, जिसको क्या कहा गया है, इंस्पिरेशनल, नॉट सिंपली इंस्ट्रक्शनल। इसलिए भगवान अंत में अर्जुन को कह रहे हैं हे परंतप। परंतप का अर्थ है, इसको एकदम विभाजित करें तो वो व्यक्ति जो कि परम तपस्वी है वो है परंतप। तो अर्जुन को परम तपस्वी क्यों कहा गया है? परम तपस्वी का अर्थ है भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि को नम्रता पूर्वक शरणागत होना सबसे अधिक उत्कृष्ट एवं परम तपस्या है। केवल बहुत सालों तक कठोर वन में जाकर तपस्या करना बिना खाए पिए सोए, वो परम तपस्या नहीं भगवान के अनुसार। भगवान के अनुसार अर्जुन को भगवान परम तपस्वी कह रहे हैं हे परंतप, अर्थात अर्जुन तुम्हारे अंदर वो नम्रता है कि तुम मेरे समक्ष किसी प्रामाणिक तत्वदर्शी के समक्ष तुम विनम्र भाव से इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हो, इसलिए तुम जैसे परम तपस्वी को ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। नहीं तो चाहे कोई बाहरी रूप से कितना भी तपस्वी दिखे, कितनी भी जटाएं कर ले, कितना भी बड़ा तपस्वी दिखे, परंतु वास्तविक तपस्या क्या है? विनम्रता, हमारे अहंकार को चूर चूर कर विनम्र भाव से भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करना। प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्न, उसे कहते हैं परंतप। तो अभी आपके सामने हम एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत करना चाहेंगे। थीम है इस नाटिका का योग नष्ट परंतप, जो आज की थीम हमने ली, कि कैसे योग अर्थात ज्ञान, कैसे ज्ञान सकालेन काल के प्रभाव से कैसे ज्ञान नष्ट होता है। तो सत्युग में क्या लेवल था ज्ञान के आदान प्रदान का, फिर सत्युग के बाद जैसे जैसे काल का प्रभाव आया त्रेता द्वापर और फिर कलयुग, तो क्या योग नष्ट किस प्रकार से हुआ, ज्ञान नष्ट किस प्रकार से हुआ? तो ये हमारे ड्रामा टीम रेडी है। तो ये सच्ची घटना यहाँ नासिक में हुई और यहां से केवल इतना समझ में आ रहा है कि योग नष्ट किस प्रकार से होता है। जैसे हमने देखा कि सत्युग में केवल एक बार बोलने से वो समझ जाते थे कि मंत्रों का अर्थ क्या है, और यहां पर तो मंत्र ही विपरीत हो रहे थे। तो भगवान इस श्लोक में जो बोल रहे हैं योगो नष्ट परंतप, कि काल के प्रभाव से कैसे ये जो ज्ञान है ये नष्ट होने वाला है। इसलिए भगवान ने जो अंतिम शब्द इस्तेमाल किया है परंतप, तो परंतप का अर्थ हमने समझा कि कैसे एक प्रामाणिक गुरु को प्रणिपात होकर विनम्र भाव से सेवा करते हुए परिप्रश्न पूछते हुए, यहां पर परीक्षित महाराज का उदाहरण है जो कि पांडवों के आगे चलकर वंशज बने। उन्होंने उनको जब शाप मिला, 7 दिन में उनको तक्षक के डसने से उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के समक्ष जाकर विनम्र भाव से अपने आप को प्रस्तुत किया, और जैसे अर्जुन का नाम उन्होंने सिद्ध किया परंतप, वैसे परीक्षित महाराज ने भी सिद्ध किया कि परम तपस्या है जब हम दिव्य ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में विनम्र भाव से स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हमारे अगले बुधवार 4.3 में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, इन सभी राजऋषियों की लिस्ट में मैंने तुम्हें क्यों इंक्लूड किया। अर्जुन का ये प्रश्न था कि क्या मैं कोई राजऋषि हूं, आपने तो ऐसे ऐसे राजऋषियों का नाम बोला है। तो भगवान कहते हैं कि भक्तोसिमे सखा चेति रहस्यम ये तद उत्तम, क्योंकि हे अर्जुन तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो, ये तुम्हारी योग्यताएं हैं इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने। जय श्री प्रभुपाद की। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की।
हरे कृष्णा। आज का जो प्रशारम स्पॉन्सरशिप है वो हमारे मंदिर के भक्त श्रीमान अनमोल लोंडे प्रभु या लोंडे माताजी, इनको सब जानते हैं। हमारे अनमोल प्रभु का शादी तय हो गया है और अगले हफ्ते में उनका शादी है, तो ये प्रसाद अनमोल प्रभु और उनके होने वाली पत्नी आरती माता जी उनके लिए प्रार्थना के रूप से स्पॉन्सर किया, उनके वैवाहिक जीवन के लिए, कृष्ण भावनामय जीवन के लिए। तो इन पूरे परिवार को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं ताकि भगवान की पूरी कृपा इनको मिले। 3 बार जोर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आने वाला जो हमारे मंदिर का मंथन रिट्रीट होगा जो सूर्य फार्म पे होगा वो होगा 2 फरवरी को, तो इसके लिए आप आपके काउंसिलर से संपर्क कीजिए और उसे पासेस प्राप्त कर लीजिए। 2 फरवरी को संडे के दिन यह मंथन कार्यक्रम होगा। 7:30 बजे हम यहाँ से दर्शनार्थी के बाद निकलेंगे। तो अनमोल प्रभु आए हैं यहाँ पे। अनमोल प्रभु माता जी, ओके, तो आरती माता जी कृपया आप आगे आइए, एक छोटा सा गिफ्ट मंदिर की ओर से स्वीकार कीजिए। अनमोलपुर और आरती माता जी दोनों प्रचार कार्यक्रम में लगे रहते हैं, प्रचार में हेल्प करना और जो भी प्रोग्राम्स होते हैं टेम्पल्स के उनके सेवा में भी लगे रहते हैं। हरि बोल। और आज के प्रचारम के जो दूसरे स्पॉन्सर है वो बंबई से भक्त है शिंदे परिवार, इन्होंने स्पॉन्सर किया है, तो उनको भी हम धन्यवाद देंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और आज आप जो देख रहे थे काफ़ी सारे बच्चों की परेशानियां कम हो गई थी, यहाँ पे आवाज़ बहुत कम था, तो इसके लिए जो सेवा की है वो हमारे हरेश प्रभु और उनके टीम ने की है। तो सारे भक्तों को लेके वो हमारा पीछे जो गार्डन है छोटे बच्चे उनको लेके गार्डन में गए थे और काफ़ी देर तक वो वहाँ पे संभलने का ट्राई कर रहे थे वो, लेकिन कुछ हद तक वो सक्सेसफुल रहे कुछ हद तक नहीं हुए। तो हम इनको धन्यवाद देंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। क्योंकि उनको खुद को ये लेक्चर मिस करना पड़ा ये सेवा के लिए। तो जो भी भक्त इसमें हेल्प करे, हर माताओं को निवेदन है कि उनके बच्चों को अगर आप हेल्प करें उस बाजू वाले पीछे वाले जो गार्डन में छोड़ने का, ताकि सब लोग अच्छे से श्रवण कर सके और ये परंपरा का ज्ञान अच्छे से बह सके। और हमारे मंदिर का हम पहली बार एक बहुत विशेष प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसका नाम है रिवाइवल, जो 28 फरवरी से चालू होगा। 3 दिन का एक कोर्स होगा जो प्रोफेशनल्स है, जो कंपनीज में कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं उन सबके लिए, नए लोगों के लिए 3 दिन का सेमिनार होगा, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये कार्यक्रम शिक्षा आश्रम प्रो खुद लेंगे, जिसके लिए वो काफी मशहूर थे बंबई में ये सब टॉक्स के, लेकिन नासिक में उन्होंने कम कर दिया था, लेकिन अभी फिर से वो यहाँ पे चालू कर रहे हैं। तो जो भी भक्तों को इसकी अधिक जानकारी चाहिए, इसके पासेस की अधिक जानकारी चाहिए, वो मुझसे आके संपर्क कर सकते हैं, हमारा यहाँ पे काउंटर होगा, उनसे ये प्राप्त हो सकेगा। और जो भी भक्त आज हमारे मंदिर में पहली बार आए हैं उनको हम निवेदन करते हैं, केवल 2 मिनट के लिए आप अपने जगह पे खड़े हो जाइए। जो भी भक्त आज हमारे मंदिर में पहली बार आए हैं केवल 2 मिनट के लिए अपने जगह पे खड़े हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब आपका, तो खड़े रहिए 2 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब आपका कीमती समय निकाल के हमारे मंदिर में पधारे। हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान को, श्री प्रभुपाद जी को और सारे वैष्णव को, कि आज की शाम आपके अध्यात्मिक जीवन की शुरुआत रहे और भगवान